अभी देखते हैं। ब्रैम्पटन टीवी अप्लायंसेस के सुल्तान भाई कहते हैं भाई सेल अभी न्यू ईयर की सेल फिर लगी हुई है इनके पास और बहुत अच्छे ऑफर्स आए हुए हैं इनके पास, तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस पे पहुंच जाइए आप। बेस्ट चीज है ब्रैम्पटन टीवी, BramptonAppliances.com, BramptonAppliances.com पे जाइए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। 801 बोवेड ड्राइव बोवेड एंड चिंकूजी के कॉर्नर पर ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस। सुल्तान भाई का फोन नंबर 9054502828। डॉक्टर पद्मजा रानी हमारी और आपकी डेंटिस्ट ईस्ट एंड में रहने वालों भाई 3410 शेपर्ड एवेन्यू राइट एट द कॉर्नर ऑफ शेपर्ड एंड वार्डन में आपको मिलेंगी डॉक्टर पद्मजा रानी हमारी और आपकी डेंटिस्ट। 4162997466 इनका फोन नंबर है। दांत सही हो गए तो अब कान भी सही करा लें अपने, तो कानों के लिए सही कराने के लिए हम आपको भेजते हैं हेयर मैक्स पे शिराज भाई के पास। शिराज साहब कहते हैं कि हेयर मैक्स पे आप साज आवाज का हवाला देंगे तो हेयरिंग टेस्ट एब्सोल्युटली फ्री कर देंगे आपका। लीजिए जी हो की चाहता हेयर मैक्स के शिराज साहब का फोन नंबर है 4167928792। हो गया जी, होश ऑन है ना, कोई कंप्लेन शम्प्लेन नहीं है। चलो जी अब चलते हैं, हम वॉक करके जाएंगे, हम आराम आराम से घूमते फिरते जाएंगे, किसको जल्दी यहाँ पर है, आराम से घूमो फिरो फिर पहुँचो उधर, पहुँचना तो है, तो चलो अभी चले जाते हैं। शाजिया मलिक जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह, कैसी हैं
आप? वालेकुम सलाम मजीद भाई, मुझे बताएं आपने ये सारे ये बेकार किस्म के क्या रखे हुए हैं एड्स, कोई दिल का डॉक्टर कोई दिमाग का डॉक्टर कोई आपने ढूंढा हुआ है कि नहीं ढूंढा हुआ? मैंने आपसे पहले भी एक दिन पूछा
नौबत नहीं है ना अभी तक
यहाँ पे तो सरों के दिमाग खराब है और दिल भी खराब है।
ला
770 में तो सबका दिमाग भी खराब है और दिल भी खराब है, किस सीट आपने दिमाग और दिल के खास तौर पे दिल का डॉक्टर क्यों नहीं है? अगर कोई दिल का डॉक्टर आपने ढूंढा होता तो हम भी कहीं दिल छिल लगा लेते,
फिर वो अंदर से तस्वीरें देख के बता देगा ना कि
तस्वीर में कौन कौन है।
हाँ, इसके इसके अंदर तो बड़े लोग हैं भाई।
हाँ तो कोई बात नहीं, हम तो खुली किताब है, हमने तो अपने कमरे में उन सबकी तस्वीरें लगाई हुई है। अच्छा चोर आपके दिल में है, आपका नाम पता चल गया एक्सरे में वो सारी लेडीज आ गई।
इज्जत भी कोई चीज होती है।
हाँ जी, जो जेब में आजकल रखी हुई है हमने, जेब में लेके फिर रहे हैं हम पाकिस्तान में
इज्जत।
हाँ, उसका कुछ खास फायदा नहीं है आजकल पाकिस्तान में।
नहीं नहीं, इज्जत भी कोई चीज होती है।
अच्छा,
धर्म भरम भी कोई चीज होती है।
अच्छा अच्छा,
हाँ जी, ऐसा ऐसे थोड़ी कोई।
ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे हमारे 2024 शुरू हो गया है, वो आपको याद है एक बड़ा ही ऐतिहासिक सेंटेंस बोला था इमरान खान साहब ने, सारी जब पाकिस्तान की हर इंस्टीट्यूट उनके खिलाफ हो गई थी ना, इंस्टीट्यूशन उनके खिलाफ हो गया था ना, तो उन्होंने कहा था कोई रह तो नहीं गया। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ 2024 में सारे आ गए हैं, कोई रह तो नहीं गया?
नहीं है, भी है रास्ते में,
रास्ते में है,
रास्ते में है।
कौन है?
बहार
उनको उधर ही रहने दो, पीछे छोड़ दो उनको, उनको 2024 के अंदर एंटर कराने की जरूरत
नहीं है।
अच्छा वो आपके दिल में है,
वही तो कह रहे हैं आप दिल का डॉक्टर लाएंगे मुश्किल हो जाएगी।
हाँ, वैसे मुझे अब ढूंढना पड़ेगा, मैं देखना चाहती हूँ आपके दिल के अंदर कौन कौन बैठा हुआ है, मुझे वो तस्वीरें सारी देखनी है। आई एम रियली इंट्रीग्ड नाउ।
एक 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 शर्त पे।
अच्छा,
उसे जाके लड़ना नहीं?
नहीं नहीं, हम उनसे पूछेंगे कि वो आपस में तो नहीं लड़ रही है आपके दिल में, हमने क्या लड़ना है
क्या टिकाया जी?
हाँ जी हाँ जी बिल्कुल उनसे लेकर पूछना पड़ेगा। मुझे पता है कि आपने जिस जिस को दिल में जगह दी है ना, आपका पहले उनसे यही वादा था कि भाई उधर जाके दूसरी से नहीं लड़ना आपने।
हाँ जी,
मुझे पता है, मुझे मजे से ही देखें, आप मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे आपके बारे में सब कुछ इनसाइड आउट पता है।
ठीक है,
सब कुछ पता है। ठीक है जी, चलो यून कम करिए कुछ है, क्योंकि मैंने वैसे भी अगले दो दिन छुट्टी करनी है। खुदा वास्ते मुझे नेक्स्ट टू डेज अपने बिल्कुल नहीं छेड़ना,
कुछ कम कर लिया।
हाँ बस ये अब कम जितना आज तक हो गया बस उसके बाद अब नहीं होएगा। ठीक है, दो दिन छुट्टी है,
कदी ते हंस बोल।
हाँ जी, जिंद साड़ी रोल वे, आपने जिंद मारी रोल दी है, कोई छुट्टी नहीं दे रहे आप हमें। हैं
दो दिन
अगले दो दिन छुट्टी।
आई डोंट वांट टू सी यू फॉर,
ठीक है माजिद भाई, बता देना इधर मैनेजमेंट को, फिर मुझे ऐसे फोन ना कर लें।
ना ना ना,
मुझे ये ना कह दें आ जाओ काम करने के लिए।
नहीं नहीं नहीं, दो दिन के लिए आई डोंट वांट टू सी यू।
अब ठीक है, बस
एब्सोल्युटली नॉट,
एब्सोल्युटली नॉट, मैं आऊंगी भी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट।
अच्छा
अच्छा जी, अच्छा जनाब हम आपको बता देंगे, दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज बीइंग ब्रॉट टू यू बाय नाने कबाब। नाने कबाब पे बड़े जबरदस्त खाने होते हैं, वीकेंड आ गया है और अगर आपको हेल्दी खाना खाना है, क्योंकि आरफा बाजी अभी सारा लेक्चर देके गई हैं कि भाई आप जो है ज्यादा तली हुई चीजें ना खाएं, तो फिर आप ग्रिल्ड खाएं। तो अगर आपको ग्रिल्ड खाने खाने हैं तो आप नानन कबोब पे जाएं, इनकी जो नई लोकेशन है 5042 सेटेलाइट ड्राइव यूनिट फिल्मी 3, उधर जाएं और उनको फोन कर लें, पहले ऑर्डर डाल लें 4162858191 एंड ओंटारियोज हलाल एंड लार्जेस्ट पाकिस्तानी बफे विलेज टेस्ट, यहाँ पे चिट्ठा साहब होते हैं, तो आप इनके दोनों रेस्टोरेंट्स पे जा सकते हैं। एक तो मिसेस आगा में है 4141 डिक्सी रोड, इसका नंबर है 6490523233663, और इसके अलावा जो ओकविल में नया इनका रेस्टोरेंट है 2294 लेक शोर रोड वेस्ट पे, उसका नंबर है 9052262294। तो अगर आप एक्सक्यूज मी इनके साथ ऑर्डर डालना चाहते हैं तो आप डाल लें और जाएं और आज जो है एंजॉय का मजा लें, ठीक है जी। इसके अलावा जनाब चांदनी विक्टोरिया, बड़ा ही ऐतिहासिक किस्म का ये जो नया इन्होंने बैंक्वेट हॉल खोला है, तो इसके अंदर 1400 लोग आते हैं प्लस टाई, मैं मजद पाई ते आमर हैं जी। तो इसमें आपने हमें बुलाना है, अगर आपका कुछ फैमिली का फंक्शन है या कि आपका बिजनेस का कोई फंक्शन है तो आप इनके 32 रूम लग्जरी रूम्स भी हैं, तो आप उनके अंदर भी अपने गेस्ट को ठहरा सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनको कॉल कर लें 8674965383 पर, ठीक है जी। ओके जनाब, हम शुरू करते हैं जनाब। स्टैट्स कनाडा ने आज बहुत बड़ी खबर दी है, इतनी बड़ी खबर दी है कि आप परेशान हो जाएंगे। आपको पता है पूरे कनाडा में कितनी जॉब्स ऐड हुई हैं दिसंबर में? 100। अब देखो कितनी ज्यादा जॉब्स आ गई हैं, तो इसीलिए जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी तक 5.8% के ऊपर ही खड़ा हुआ, यानी कि दिसंबर की ये रिपोर्ट है, जनवरी की तो अभी आएगी फरवरी के अंदर। वो कहते हैं जी कि फुल टाइम जॉब्स जो हैं वो गिरी थी दिसंबर में बाय 23,500, विच मीन्स कि ये जॉब्स लूज की हैं लोगों ने, 23,500 लोगों ने जॉब्स लूज की हैं, और पार्ट टाइम पोजिशन जो थी वो 23,600 थी, यानी कि जो 5-6 घंटे 7 घंटे जो लोग काम करते हैं, नॉट द फुल डे। और इसमें वो कहते हैं जी कि रिटेल ट्रेड सेक्टर जो है उसके अंदर ज्यादातर जॉब्स गई थी 20,600, और जो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ थी वो ओवरऑल सेकेंड हाफ ऑफ 2023 में स्लो थी। जाहिर है अब इतनी जॉब्स जाएंगी तो एम्प्लॉयमेंट रेट स्लो ही है ना, मतलब दिस इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो उन्होंने कहा जी कि ये जो है एवरेज 23,000 पर मंथ कंपेयर्ड विद 48,000 पर मंथ इन द फर्स्ट 6 months ऑफ द ईयर, जो है ये उन्होंने कंपैरिजंस दी हैं। तो इस तरह से ये 2023 में चीजें
अकॉर्डिंग टू देम दे आर वेरी हैप्पी बिकॉज ऑल द इंटरेस्ट रेट दैट दे रेज्ड 11 टाइम्स और उसकी वजह से जो है ये इफेक्ट पड़ा है, तो दे आर वेरी सक्सेसफुल।
मजद भाई आपको पता नहीं है पूरे कनाडा में 100 जॉब्स क्रिएट हुई हैं।
आई नो,
इतनी बड़ी ये जो है अचीवमेंट है, आप कनाडा की कोई अचीवमेंट मानते ही नहीं हो मजद भाई?
लुक एट दैट,
पाकिस्तान में 100 जॉब्स हुई हैं क्रिएट?
आई वाज अशेम्ड।
नहीं क्यों भाई?
आई वाज अशेम्ड व्हेन आई रेड दैट एंड आई सेड ओ माय गॉड।
हां बस कनाडा है ना ये, फिर
दिस इज कनाडा। सो 24 इज नॉट वेरी ब्राइट।
हाँ जी हाँ जी, वो तो हम बड़े दिनों से कह रहे हैं, हम पिछले एक साल से कह रहे हैं कि जो पिक्चर है हमें बड़ी ब्लीक नजर आ रही है, लेकिन शायद लोगों को ब्लीक का मतलब नहीं समझ आ रहा।
हाँ तो आप,
तो आप बोल दें डार्क। हमें फ्यूचर बड़ा कनेडा का डार्क नजर आ रहा है जी, ऐसे है। और वैसे भी आपने अब जिधर जिधर से सड़क से भी गुजरना है ना, आपको जगह जगह पे फाइन मिलेंगे हैं जी, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे तो खत्म हो गए हैं। अब तो हर जगह
तो पैसे आने ना।
हाँ
तो आप ही से अभी हाँ, वो 6 टैक्स बढ़ाए इन्होंने।
हाँ जी हाँ जी,
अभी April 1st से 17 सेंट 17 सेंट एट ए टाइम, बूम।
यस,
आप April 1st को, एंड ये दिस इज नॉट April फूल्स डे, नो, April 1st को whatever the price is, उसमें 17 सेंट ऐड कर लिया।
बिल्कुल, मुबारक हो माजिद भाई आपको। वैसे मैं सोची थी आज आपने बहुत ही अच्छी एक खबर देनी है, जो आपने दी नहीं, कि भाई जो सबसे अच्छी आज कनाडा की खबर है कि स्नो आ रही है भाई, ब्रेस फॉर इट, आपने दी नहीं है।
आ रही आ रही,
आपने वो खबर दी नहीं। अच्छा,
नहीं वो स्टार्ट मेरा शो का स्टार्ट में 3 o'clock।
अच्छा अच्छा, कह दिया आपने, वेरी गुड, ये सबसे अच्छी खबर।
सब लोगों को जो कहते हैं
मुबारक हो
यार, व्हाइट क्रिसमस नहीं हुई।
हाँ।
यार क्रिसमस के हॉलीडेज में जो है उसमें बर्फ नहीं गिरी।
हाँ।
तो मैं उनसे कह रहा था होल्ड ऑन, आएगी, परवाह ना करें, अपने मसल्स बना लें,
मसल्स।
तो वो अब जो है वो सैटरडे को एक थोड़ा सा ट्रेलर आएगा, है ना?
हाँ जी,
ट्रेलर आएगा सैटरडे को,
उसके बाद उसी खुद सारे चिट्टे हुए होंगे।
सैटरडे का जो ट्रेलर है वो 5 सेंटीमीटर का, मगर ट्यूजडे को जो आ रहा है ना, इनको खुद नहीं पता कि कितना बड़ा है वो।
एग्जैक्टली
है ना जी,
एग्जैक्टली आ रहा है, बस आ रहा है।
अनलेस कोई पीर साहब जो है उसको डाइवर्ट
हटा दें। हाँ हाँ हाँ, चलो जी। पीर जुतियां शरीफ को बुलाते हैं। इसको मार मार के बगैर। अच्छा जनाब, ये जो खबर है इसने भी मुझे बड़ा हैरान ते परेशान किया कि अमेरिका जैसा कंट्री जो है कनेडा से ड्रग्स मंगवाएगा। हालांकि कनेडा में तो खुद अपने लोगों के लिए ड्रग्स नहीं है, हम तो खुद अमेरिका से मंगवा रहे हैं।
आप कौन मतलब से वाली है बात कर रहे हैं?
बट ड्रगे जो है दवाइयां मेडिकेशन, वो कहते हैं जी कनेडा के अंदर बड़ी चीप मेडिकेशन है, तो इसलिए जो प्रिस्क्राइब्ड ड्रग्स है वो एफडीए ने वहां पे अमेरिका
तो
में
पता नहीं, कौन सी
हमें नहीं पता। हाँ जी, लेकिन एफडीए को पता है।
अच्छा, वो क्या कर रहे होंगे कि 30% डाउन, 30% आपका जो भी एक डॉलर का है वो 30% कम
डाउन, हाँ, तो उसमें उससे आपको बोलेंगे जी वो, क्योंकि जब आप कन्वर्ट करेंगे अमेरिकन डॉलर में तो वो आपको बहुत ही चीप पड़ेगा,
एक डॉलर
तो,
70 सेंट।
हाँ जी, तो वो कह रहे हैं जी कि ये जो फ्लोरिडा की स्टेट है इसमें वो जो गवर्नर थे रिपब्लिकन गवर्नर रॉन डिसेंटिस, इन्होंने ये लॉ बनाया था 2019 में कि चीपर हमको ड्रग्स चाहिए, यानी कि मेडिसिन चाहिए, तो उसके लिए ये कह रहे थे कि हमको देखना पड़ेगा कनेडा की तरफ। तो वो इसके ऊपर लेकिन अप्रूवल चाहिए होता है, जो प्रेसिडेंट का गो हेड होना चाहिए और फिर एफडीए का बेसिकली अप्रूवल होना चाहिए। तो बाइडन साहब जो थे वो भी चाहते थे कि ये लोअर प्राइसेस वाली मेडिसिन लोगों को मिले, तो उन्होंने इसको एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया था 2021 में, लेकिन एफडीए ने अभी तक अप्रूव नहीं किया था। तो आज एफडीए ने अप्रूव कर दिया है और उन्होंने कहा है कि ये जो बहुत बड़ी जो फार्मास्यूटिकल लॉबी जो थी, इंडस्ट्री जो थी, वो बड़े अरसे से कह रही थी कि भाई चीप ड्रग्स यहां पर अमरीका में मिलनी चाहिए, तो आप कैनेडा से मंगवाएं। तो अब ये कैनेडा से मंगवा रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने कहा था कि हो सकता है कि कैनेडा से काउंटरफीट मेडिसिन आ जाए, जो हैं वो फेक मेडिसिन भी हों, एडल्ट्रेटेड ड्रग्स भी आ सकती हैं।
कैनेडा जो है वो इंपोर्ट कर रहा है पाकिस्तान से और, हाँ। और
पाकिस्तान मंगवा रहा है चाइना से। अच्छा जी, तो इसीलिए अमरीका में डर था कि कहीं काउंटरफीट ड्रग्स ना आ जाए।
हाँ,
हूं पैन थोड़ी किस्मत खराब की कर सकते
हैं।
लेकिन मैं मुझे लगता है जो पाकिस्तान से ड्रग्स आ रही है ना, ये वैसे ठीक हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ड्रग्स जो है ना किसी काम की है नहीं वैसे, बकवास टाइप की है, वो ठीक कर देंगे
एक वक्त में
दिमाग भी दिल भी। अच्छा जी, ठीक है जी, तो ये एफडीए ने जी आज अप्रूवल दे दिया है, बड़ी हैरत की बात हुई मुझे पैन भारत। अच्छा जी, लग्जरी सेल्स जो हैं वो ट्रोनो के अंदर जो 10 मिलियन से ज्यादा के घर थे वो उनकी सेल्स 10% अप रही 2023 में। इसमें से बहुत सारे जो घर थे देवर लोकेटेड ऑन द सेम स्ट्रीट, दिस इज रसल हिल रोड इन फॉरेस्ट हिल, और यहां पे जो एक प्रॉपर्टी थी वो तो प्राइवेटली सेल की गई थी, उसका जिक्र नहीं किया गया था, $17 मिलियन की वो बिकी थी। बाकी जो कुछ बिकी है प्रॉपर्टीज, एक तो थी 174 डन वीगन रोड के ऊपर, ये $16.5 मिलियन की सेल की गई थी। 299 रसल हिल रोड की गई थी ओवर $6 मिलियन। 57 फायर शायर रोड, इसको सेल किया गया था $11.8 मिलियन से ज्यादा। 21 ऑल्डर ब्रुक रोड को सेल किया गया था $14.3 मिलियन से ज्यादा। 332 रसल हिल रोड, इसको भी सेल किया गया था $13.9 मिलियन से ज्यादा थोड़ा। तो ये जनाब जो कहते हैं जी कि 10 मिलियन से ऊपर के घर के जो हैं वो ज्यादा यहां पे बिके हैं, हालांकि लोगों ने कोलते पैसा नहीं है तो फिर उनकी हो सकता है। बहरहाल यूएस जो है जी आज उसने ऑफर किया है $10 मिलियन फॉर 5 हमास लीडर्स जो हैं उनको मारने के लिए। वो कह रहे हैं जी ये 5 जो हमास के लीडर हैं ये फाइनेंसर्स हैं, और जो है इनके ऊपर पहले तो यूएस ने सैंक्शंस लगाई थी जब अक्टूबर 7 का अटैक किया था हमास ने इसराइल के ऊपर। तो इनके जो नाम आज सामने आए हैं वो हैं अब्दुल बासित हमजा, अल हसन खैर, आमिर कमाल शाह शरीफ, एशावा अहमद, सादु जहलेब, वलीद मोहम्मद, मुस्तफ़ा जदाला, मोहम्मद अहमद, अब्दुल दाहिम, नसरल्ला, और ये सारे जो हैं वो कहते हैं जी जो नसरल्ला है इसको तो पहले भी यूएसए ने कहा था कि ये एक ग्लोबल टेररिस्ट है और ये बेस था सूडान के अंदर, वापस की कंपनियां थी वहां से, इसने तकरीबन $20 मिलियन जो हैं वो ट्रांसफर किए थे हमास को, और इसका ताल्लुक जो है सूडनीज प्रेसिडेंट उमर बाशिर जो है उसके साथ है। इसके अलावा आमिर अहमद, सादु और वलीद जो हैं दे आर पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट नेटवर्क, और ये तुर्की के अंदर जो है इनकी इन्वेस्टमेंट्स हैं। नसरल्ला जो है उसके बड़े क्लोज जो है टाइज हैं इरानियन एंटिटीज से, और कहा जाता है कि ये अक्टूबर के महीने में कतर में देखा गया था। बहरहाल जी इन सारों के बारे में आज जो अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उसने कहा है कि कोई भी जो हमें इन हमास के फाइनेंसर्स के बारे में बताएगा या ऐसा कुछ जो हमें लीड करेगा इनकी तरफ ताकि इनको पकड़ के मारा जा सके इन फाइनेंसर्स को, ताकि पैसा ना पहुंचे हमास तक, तो हम इनको $10 मिलियन देंगे। ऐसा आज जो यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट है जी, उसने यूएस कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स इंडेक्स निकाला है, जिसके के ऊपर कांग्रेस जो है उसके अंदर हियरिंग रिक्वेस्ट की गई है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने स्टेट डिपार्टमेंट ने कहा है कि जी बहुत सारे कंट्रीज जो है दे आर कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, लेकिन उसमें इन्होंने इंडिया का नाम जो है वो नहीं दिया है। ये जो रिपोर्ट आई है जिसमें के कहा गया कि हिंदुस्तान के अंदर बेशुमार जो है वो हेट क्राइम्स जो हैं, तो फिर भी इसको क्यों नहीं डाला गया। ये लिस्ट जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन साहब ने जो है वो उसका जिक्र किया है, और उन्होंने कहा है कि जी इसके अंदर बर्मा, चाइना, क्यूबा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया, एरिटेरिया, ईरान, निकरागुआ, पाकिस्तान, रशिया, सऊदी अरेबिया, ताजिकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान जो है कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न हैं। और इसके अंदर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि यहां पे बहुत ज्यादा वायलेशन ऑफ रिलीजियस फ्रीडम है, और इसके अलावा उन्होंने डेजिग्नेट किया है अल शबाब, बोको हैरम, हयात तहरीर अल शाम, हूतीज, आइसिस साहिल, आइसिस वेस्ट अफ्रीका, अलकायदा और इनकी जो अफिलिएट है जमात नसर अल इस्लाम वल मुस्लिमीन और तालिबान। तो इन्होंने कहा जी कि ये तमाम एंटिटीज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट है। अब यूएससीआईआरएफ के जो चेयरमैन है अब्राहम कूपर और वाइस चेयर जो है फ्रेडरिक ए डेवी, उन्होंने एक ज्वाइंट स्टेटमेंट निकाली है, और उन्होंने कहा जी हमें समझ नहीं आ रही है कि ये लिस्ट आपने कैसे निकाली है जिसके के अंदर आपने इंडिया को डेजिग्नेट नहीं इसमें किया है कंट्री ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट, क्योंकि बेतहाशा वहां पर भी रिलीजियस फ्रीडम्स की वायलेशन हो रही है। गवर्नमेंट जो है उसने ट्रांस नेशनल रिप्रेशन एक्टिविटीज जो है बेतहाशा कर दी है अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, खासतौर पे मुसलमान एंड क्रिश्चियंस, और हमें समझ नहीं आया है कि आपने इंडिया को कैसे इसमें से ओमिट किया, तो हालांकि उसको भी पार्ट ऑफ द लिस्ट होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा जी कि हम अब यह कहना चाहते हैं कि आप इसके ऊपर एक प्रोब बिठाएं और आप हमें जवाब दें, यानी प्रोब क्या है, जवाब दें कि आपने हिंदुस्तान को इस लिस्ट के अंदर क्यों नहीं डाला है। तो इससे पहले भी आपको पता है कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आई थी रिलीजियस माइनॉरिटीज के खिलाफ जो काम होता है हिंदुस्तान में, तो उसके बारे में सवाल किया गया था अमेरिकन कांग्रेस में, लेकिन अमेरिकन गवर्नमेंट ने उस पर कोई कमेंट नहीं दिया था, और इंडिया ने भी कहा था कि ये एक पर्टिकुलर लॉबी है जो हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रही है, ऐसा हिंदुस्तान में कुछ नहीं है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसने कहा जी कि जो स्टूडेंट लोन्स हैं $2 मिलियन के ऊपर से, तो वो जो एंटिटीज इनको देती थी उनको हम नहीं दिए, डॉप किया उनको, यानी कि स्टॉप किया उनको। ये पेंडेमिक की जो पेमेंट्स थी ये इनको के वक्त जो दी गई थी स्टूडेंट्स को बिल फिर जो भेजे गए थे तो वो वक्त पे नहीं भेजे थे। यूएस एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है उसने अब विदहोल्ड की है ये सारी की सारी पेमेंट्स फ्रॉम एड वेंटेज, एड फाइनेंशियल, नेल नेट, क्योंकि वो कहते हैं जी इन्होंने अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए, इन्होंने टाइमली तरीके से जो स्टेटमेंट्स जो थी वो ओवर 750,000 बोरोअर्स जो थे इन द फर्स्ट मंथ ऑफ रीपेमेंट्स उनको नहीं भेजे थे, और एजेंसी ने कहा जी कि हम ये बिल्कुल अग्रेसिव ओवरसाइट करते रहेंगे कि आप ये लोगों को बिलिंग क्यों नहीं कर रहे हैं, आपका बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस है। इससे पहले एजेंसीज ने कहा था कि जी कुछ एरर्स आ गए थे, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ जो स्टूडेंट्स थे अक्टूबर के महीने में उन्होंने कहा था कि जब हमको बिलिंग स्टेटमेंट्स मिली थी एक तो वो लेट मिली थी और उसके अंदर इनकरेक्ट जो है वो अमाउंट्स भी लिखे हुए थे। तो डिपार्टमेंट ने कहा कि हम विदहोल्ड कर रहे हैं $7.2 मिलियन जो हैं फ्रॉम लोन सर्विसेज मोहेला भी, और इन्होंने भी टाइमली तरीके पे हमें अपनी स्टेटमेंट्स नहीं भेजी है, और ये सर्व करते थे 2.5 मिलियन बोरोअर्स को। तो इस तरह जाहिर है कि अब गवर्नमेंट होल्ड कर लेगी लोन्स तो फिर बच्चों को भी नहीं पहुंचेंगे, तो बच्चों को भी जो है वो मुश्किलात का सामना आएगा, लेकिन बहरहाल गवर्नमेंट ने कहा जी कि ये कंपनीज जो है इनको ठीक तरह से काम करने की जरूरत है। जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि एंथनी ब्लिंकन साहब जो है मिडिल ईस्ट के दौरे पे जाएंगे क्योंकि टेंशन्स बहुत ज्यादा हो गई हैं, तो आज एंथनी ब्लिंकन साहब जो है वो तुर्की में पहुंचे हैं मिडिल ईस्ट के दौरे पर, और ये मिडिल ईस्ट का उनका चौथा, और इसराइल भी जाएंगे तो वो इसराइल का ये पांचवां उनका दौरा होगा। बेसिकली ये तो आज तुर्की की लीडरशिप के साथ बात कर रहे हैं, कल सैटरडे को इनकी मुलाकात जो है तैयब अर्दोगान से भी होगी, लेकिन बेसिकली इनकी मुलाकातें जो हैं इजरायली ऑफिशियल्स खासतौर पे प्राइम मिनिस्टर नतन्याहू के साथ होंगी, उसके बाद ये वेस्ट बैंक, जॉर्डन, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट और फिर ग्रीस भी ये जाएंगे। स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन मैथ्यू मिलर ने कहा है जी कि ब्लिंकन साहब जो है वो इनसे बात करेंगे इजरायली प्राइम मिनिस्टर से ह्यूमैनिटेरियन एड को गाजा में पहुंचाने के लिए, और خاص طور پہ یہ جو ٹینشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے حماس کے ڈیپٹی لیڈر صالح اروری کو جو مارا گیا ہے بیروت میں, اور حزب اللہ نے بھی کہا ہے کہ جی ہم اس کا جواب اسرائیل کو دیں گے, تو یہ وار جو ہے اب لیبنان کے بارڈرز تک پہنچ گئی ہے. اس کے علاوہ ریڈ سی کے اندر بھی آپ کو پتا ہی ہے ہوتیز جو ہیں اٹیک کر رہے ہیں امریکن ریلیٹڈ سارے شپس کے ساتھ یا ان کے جو ایلائز ہیں, اس کی وجہ سے یہ ریڈ سی میں بھی وار پہنچ تو مطلب پھیلتی جا رہی ہے علاقے میں. تو مارک ملر میتھیو ملر صاحب نے کہا کہ اینتھنی بلنکن صاحب نہ صرف نتن یاہو کے ساتھ بات چیت کریں گے لیکن اب کیا بات کریں گے وہ انہوں نے نہیں بتایا, کیونکہ عرب نیبرز جو ہیں اسرائیل کے وہ سارے بڑے زیادہ ناراض ہیں کیونکہ وہ کہتے ہیں جی کہ سیز فائر کمپلیٹلی یہاں پہ ہونا چاہیے کیونکہ 22,000 سے زیادہ جو ہیں پیلسٹینینز کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس وار کو رکنا چاہیے. ملر نے اس کے علاوہ بھی کہا کہ یہ جو کانورسیشنز ہیں یہ بہت ہی چیلنجنگ اور ڈیفیکلٹ ہوئیں گی, اور یہ ضروری نہیں ہے کہ اس ٹرپ کے اوپر یہ جو اینتھنی بلنکن صاحب مڈل ایسٹ کا کر رہے ہیں وہ بڑے ایزی ٹاکس رہیں گی یا بڑے ایزی ریلیشنز رہیں گے, کیونکہ ظاہر ہے یو اے ای تو شاید ان کو پیار محبت دکھائے گا. ان کی اب آج کل دوستی جو ہے قطر کے ساتھ مجبوری ہے, تو ظاہر ہے کہ قطر کو بھی نہیں چھڑیں گے اور ایجپٹ کو بھی نہیں چھڑیں گے کیونکہ ان کے ساتھ بھی بات چیت ضروری ہے. سعودی عربیہ سے بہرحال جی کافی ان کے ذرائع اختلافات جو امریکہ کے بڑھ گئے ہیں, جیسے کہ آج انہوں نے اپنی جو کنٹری آف پرٹیکولر انٹرسٹ میں بھی سعودی عربیہ کا نام ڈالا ہے, تو سعودی سے شاید ان کو سخت کچھ جواب مل سکتا ہے. تو اب دیکھیں گے جناب کیا ہوتا ہے اس دورے پہ اینتھنی بلنکن صاحب کے ساتھ. پاکستان کے اندر تو جناب عجیب ہی حالات ہیں, بٹ وی آر گوئنگ ٹو یو نو ٹیک اے بریک ان اے سینس دیٹ وی ول یو نو اناؤنس سم آف دا ایڈ جو کہ جس کی وجہ سے ہم یہ ساری پاکستان انڈیا کی خبریں جو آپ تک لاتے ہیں. دس پارٹ آف دا پروگرام از بینگ براٹ ٹو یو بائی راجا بادشاہ جی, دل اور سب کے سٹائل کے بھی بادشاہ ہیں راجا جی. تو راجا جی جو ہیں وہ آل اسٹیٹ کے ایجیکس ایجنسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں, اور ان کا نمبر ہے 6472903773, اور یہ کہتے ہیں میں آپ کو رائٹ کوریج دوں گا, آپ میرے ساتھ پیار محبت یا دوستی بنا کر رکھیں, ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ جناب عدنان الوی صاحب, عدنان الوی صاحب کہتے ہیں جی کہ اگر آپ نے امیر بن کے رہنا ہے اور غریب کی طرح نہیں رہنا تو آپ مجھ سے سمپرک کریں. جو عدنان الوی صاحب ہیں وہ لائف ٹائم گروپ کے پریزیڈنٹ ہیں, اور وہ کہتے ہیں جی ان کا جو سلوگن ہے وہ کہتے ہیں انویسٹ وائزلی لیو ویلدی. ان کا نمبر ہے 4163010249. اچھا جناب یہ جو پاکستان کے اندر آج ڈرامہ ہوا ہے جس کا کہ ذکر ابھی فیاض بھائی نے بھی کیا ہے بڑی ڈیٹیل میں, یہ جو لا میکر تھے سینیٹر دلاور خان صاحب, یہ انڈیپینڈنٹ لا میکر ہیں سینٹ کے اندر, اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کو بولنا چاہیے کہ جی الیکشنز جو ہیں ان کو ڈیلے کرنا چاہیے, یہ ریزولوشن لے کر آئے اور یہ ریزولوشن پاس ہوگی. میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ سینٹ کے اندر جو ہیں 100 ممبرز ہیں تو یہ اوور ویلمنگلی اس کو اپروو نہیں کیا گیا. اس وقت جو ہے سینٹ کے اندر صرف 14 ممبر بیٹھے ہوئے تھے 100 میں سے, صرف 14 میں سے بھی 12 نے اپروول دیا ہے, دو جو ہے انہوں نے ابسٹین کیا تھا. تو اوور ویلمنگ رسپانس نہیں ہے لیکن پھر بھی سینٹ نے اس کو اپروو کیا, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا 100 ممبر ہیں سینٹ کے تو 100 میں سے صرف 14 اس وقت موجود تھے. اس کے اوپر بات کرتے ہوئے پی 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 کی جو سینیٹر ہیں شیری رحمان, انہوں نے بعد میں پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی ہم بالکل اس کو سپورٹ نہیں کرتے, نہ پارٹی اس کو کرتی ہے, اور ہم بالکل یہ سینٹ کی ریزولوشن کے فیور میں نہیں ہیں. پی 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 کے سینیٹر جو ہیں شہادت آوان, انہوں نے بھی کہا جی کہ یہاں پہ وہ موجود تو نہیں تھے اس وقت لیکن انہوں نے کہا یہ ریبیلین اگینسٹ کانسٹیٹیوشن ہے اور یہ ایک بڑی پلانڈ موو اور کانسپریسی سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے, اس کو ٹیبل بڑے پلان کے ساتھ کیا گیا ہے, کیونکہ جو آج کا ایجنڈا تھا لوگوں نے اس کو ایزی سمجھا, اسی لیے لوگ آج سینٹ میں آئے بھی نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا دس واز ناٹ آرڈر آف دا ڈے ٹو ڈے, تو اس لیے بھی لوگوں نے کہا کہ عام باتیں ہوئیں گی, تو یہ اس لیے اگر ان کو پتا ہوتا سینیٹرز کو کہ یہ بات کی جانی ہے تو شاید سارے کے سارے 100 سینیٹرز جو ہیں وہ موجود ہوتے. بہرحال جی وہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوگ ڈرتے ہیں کہ وہ ہار جائیں گے وہ اب نہیں چاہتے ہیں الیکشنز یہاں پہ ہوئے. پی ٹی آئی کے سینٹرل لیڈر شیر افضل مروت جو ہیں انہوں نے بھی کہا کہ یہ کانسٹیٹیوشن کی وائلیشن ہے اور آرٹیکل 6 ان تب سب کے اوپر اپلائی ہوتا ہے جو کہ اس کے فیور میں ہے کہ الیکشنز نہ کیے جائیں, یہ انتہائی اینٹی کانسٹیٹیوشنل ریزولوشن ہے. جماعت اسلامی کے جو امیر ہیں سراج الحق صاحب, انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ کانسپریسی اگینسٹ دا کنٹری اینڈ ڈیموکریسی, ہم ڈیموکریسی کو لائن کے اوپر کیسے لائیں گے اگر آپ جو ہیں ڈیلے کرتے جائیں گے پولز کو. پہلے آپ کہتے ہیں جی کہ ہمارا بڑا انریسٹ کا کنسرن ہے کے پی اور بلوچستان کے اندر, تو اگر انریسٹ کا ہے تو اس کے لیے آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے, الیکشنز کو ڈیلے کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم فری اور فیئر الیکشنز جو ہیں وہ چاہتے ہیں. پی ٹی آئی کے سینیٹر گردیپ سنگھ اور پی 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 کے سینیٹر بہرامند تنگی جو تھے انہوں نے, وہ حالانکہ تھے وہاں پہ موجود سینٹ کے اندر لیکن انہوں نے ابسٹین کیا تھا اور سینٹ کے چیئرمین جو ہیں اس کے بعد انہوں نے جو ہے سیشن ایڈجرن کر دیا انڈیفینیٹلی. तो ये आज जो है पार्टीज जो हैं फिर भड़क गई हैं। बहरहाल हमने तो बड़ी दफा कहा जी कि मुश्किल ही लग रहा है कि ये इलेक्शंस करवाएंगे, बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। इमरान खान साहब जो हैं आज उनका फिर से जो ईसीपी कंटेम्प्ट केस है उसके अंदर उनका चल रहा था आज जो है वो केस, तो उन्होंने थ्रेटन किया है कि वो ईसीपी यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ ट्रीजन के चार्जेस जो हैं वो फ्रेम करेंगे, क्योंकि जाहिर है कि उसकी यही वजह है कि जब असेंबलीज टूटती हैं तो उसके 90 डेज के अंदर इलेक्शंस होने चाहिए जो कि ईसीपी ने नहीं कराए, तो डेफिनेटली दिस कम्स अंडर ट्रीजन एंड अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने कहा जी कि अगर मैं पावर में आया तो मैं ईसीपी के ऊपर ट्रीजन चार्जेस लगाऊंगा। और उन्होंने क्वेश्चन किया, उन्होंने कहा कि ईसीपी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कौन होते हैं मेरे अगेंस्ट चार्जेस लगाने वाले या मेरे खिलाफ प्रोसीडिंग स्टार्ट करने वाले, ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ नहीं है, ये एक एजेंसी है जिसका के काम सिर्फ मुल्क के अंदर इलेक्शन करवाना है और वो भी 90 डेज के अंदर। ये जितने भी मेंबर्स बैठे हुए थे ईसीपी के वो बिल्कुल खामोश बैठे रहे जिस वक्त तक इमरान खान साहब बात कर रहे थे। उन्होंने लेकिन ये बड़ा अपनी तरफ से जोक किया, उन्होंने कहा हाँ जी इमरान खान साहब और बोलो एक और कंटेम्प्ट केस आपके ऊपर अब फिर बनाएंगे। बाद में पीटीआई के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर खान जो हैं उन्होंने कहा जी कि हमारा किसी के साथ कोई इशू नहीं है, या तो एस्टैब्लिशमेंट या दूसरे लोग, हमने बड़ी दफा कहा है मिलिट्री भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, हम सबके साथ मिलकर बात करना चाहते हैं, हमारे साथ टेबल पर बैठे सो दैट वी कैन क्लियर द एयर। और ये उन्होंने बातें की, लेकिन अब इसमें जर्नलिस्टों ने जो है वो बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं, इसका जवाब तो नहीं उनसे ले सके बैरिस्टर गौहर साहब से, लेकिन अब जर्नलिस्ट भी और बाकी के भी जो इंटेलिजेंसी है पाकिस्तान में वो पूछ रहा है कि क्या ये बातें या ये नजरिया जो है इमरान खान साहब का भी है, और जो उन्होंने इल्जाम कमर बाजवा पे या मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट में लगाए थे क्या वो वापस लेने को तैयार हैं कि नहीं है। साढ़ा जवाब पहनो नहीं लेंगे। तो गौहर साहब जो है वो तो और बात कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान साहब हमें नहीं लगता कि अपने स्टेटमेंट जो है वो वापस लेंगे। आज बहुत ही अफसोस का एक वाकया हुआ है पाकिस्तान में, और वो ये हुआ है कि सुन्नी उलमा काउंसिल के जो टॉप ऑफिशियल हैं मौलाना मसूदुर रहमान उस्मानी, उनको आज अननोन असेलेंट्स ने इस्लामाबाद के अंदर गोली मार के मार दिया है। ये वाकया जो है खन्ना पुलिस स्टेशन के ज्यूरिसडिक्शन में इस्लामाबाद में हुआ है, और इनकी गाड़ी जो थी वो गौरी टाउन एरिया से गुजर रही थी जब कुछ लोग मोटरसाइकिल पे आए और उन्होंने इनके ऊपर फायरिंग की जिसके के अंदर उनकी डेथ हुई। काउंटर फायरिंग में पुलिस की में एक आदमी मर गया है और दूसरा इंजर्ड है। पुलिस कह रही है कि हम परपेट्रेटर्स को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ सीसीटीवी कैमरा फुटेज, और कल्प्रिट्स जो है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको सजा पहुंचाई जाएगी। तो आज इस्लामाबाद के अंदर काफी अनरेस्ट है, लोग जो हैं वो डरे हुए हैं, और काफी हो सकता है कि आने वाले दिनों में सुन्नी उलमा काउंसिल जो है वो एक यहां पे मोर्चा भी निकाले इस्लामाबाद में, तो वेरी वेरी सैड। आईएसपीआर की आज एक प्रेस रिलीज आई है जी, और इसके मुताबिक जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने दो टेररिस्टों को मार गिराया है इंटेलिजेंस बेस्ड एक ऑपरेशन में केपी के टांग एरिया के अंदर। वो कहते आईएसपीआर कहता है जी कि फोर्सेस को ये इत्तला मिली थी कि कुछ टेररिस्ट जो है इस एरिया के अंदर प्रेजेंट हैं, जिसकी वजह से फिर जो है वहां पे जो आर्म्ड फोर्सेस हैं वहां पे पहुंची और फिर टेररिस्टों के और उनके बीच में जो है फायर एक्सचेंज हुआ, दो टेररिस्टों को इसमें मारा गया। उसके अंदर एक हाई वैल्यू टारगेट गुल यूसुफ भी था जो अपने आप को तूर कहता था, ये बहुत ही एक्टिवली इन्वॉल्व था टेररिस्ट एक्टिविटीज में अगेंस्ट सिक्योरिटी फोर्सेज इंक्लूडिंग अटैक्स इन टांग एंड डीआई खान, और एक्सटॉर्शन में इन्वॉल्व था और टारगेट किलिंग में इन्वॉल्व था। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इसके सर्प के ऊपर हेड मनी जो था 2.5 मिलियन रुपीस जो था वो रखा हुआ था, तो उसी सिलसिले में एक इंटेलिजेंस दी गई थी सिक्योरिटी फोर्सेस को जिसकी वजह से इसको मार गिराया गया है। नैब जो है जी उसने अब 4 दिन का फिजिकल रिमांड एक्सटेंड किया है फवाद चौधरी के लिए इन ग्राफ्ट केसेस ऑन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन जेलम, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट 1 जो है इस्लामाबाद में उसने ये किया। इनके जो जज हैं मुनीर बशीर साहब, उन्होंने एक्सटेंड किया फवाद साहब का फिजिकल रिमांड ऑन नैब्स रिक्वेस्ट, और उन्होंने कहा जी कि नैब ने इनको कहा कि हमने जब इनके 7 बैंक अकाउंट्स एग्जामिन किए तो हमको पता चला कि शायद ये जो ट्रांजेक्शन हैं ये सस्पिशियस थी, तो कहीं ये ब्राइब्स के अंडर तो नहीं आती हैं, तो इसलिए हमको और टाइम चाहिए इसको प्रोब करने के लिए। इसके अलावा कोर्ट जो है उन्होंने इनको ऑफिशियल्स जो है नैब के उनको कहा कि भाई आप सारी अपनी प्रोब करने के बाद January 9 को इनको कोर्ट में फिर से लेकर आए, और लेकिन जो कोर्ट में जब चौधरी साहब आए तो उन्होंने कहा जी कि मुझे एटलीस्ट अपने बीवी बच्चों से मिलने दो, जिसकी कि इनको कोर्ट ने इजाजत दी है। नैब के चेयरमैन लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नजीर अहमद बट जो है उन्होंने इनके अरेस्ट वारंट्स जो थे वो साइन किए थे, और फिर उसके बाद इनको जो है अडियाला जेल में जहां पर ये जेल काट रहे थे वहां से फिर कस्टडी में लिया गया था। केयर टेकर फेडरल गवर्नमेंट जो है जी उसके बीच में और के इलेक्ट्रिक के बीच में अब बहुत सारे आज मुआहदे हुए हैं, जिसमें कि कहा गया है कि कराची में जो कॉन्स्टेंटली पावर का प्रॉब्लम है इसको कॉन्स्टेंट इसकी सप्लाई जो है वो होनी चाहिए। तो इसके बीच में जो अब इनके जो अग्रीमेंट्स हुए हैं वो हैं टैरिफ डिफरेंशियल सब्सिडी, 10-year पावर परचेज एजेंसी अग्रीमेंट्स, और केयर टेकर मिनिस्टर फॉर पावर एंड पेट्रोलियम मोहम्मद अली ने कहा जी कि हम बिल्कुल ये बताना चाहते हैं कि अंडर द गोल्डन नॉट पावर सेक्टर के अंदर हम ज्यादा एफिशिएंसी और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, और जितने भी ये बॉटल नेक्स हैं जो कि कराची और सारे एरिया में प्रोविंस में जो सप्लाई नहीं पावर की मिलती है इसको हमेशा के लिए वंस एंड ऑल खत्म करना चाहते हैं। ये शो करता है कि पाकिस्तान के जो इंस्टीट्यूशन जो हैं वो पाकिस्तान के लिए कमिटेड हैं, और उन्होंने कहा कि जी हम एक ऐसा एनवायरमेंट मिनिस्ट्री वाले क्रिएट करना चाहते हैं जिसके अंदर पाकिस्तान का पावर सेक्टर जो है वो थ्राइव करे, क्योंकि उसका फायदा जो है वो हमारे कस्टमर्स को होएगा। हिंदुस्तान के अंदर भी जनाब जैसे जैसे अब इलेक्शंस आ रहे हैं बहुत ज्यादा वहां पे भी हीट अब जनरेट होना शुरू हो गई है, रोज ही कोई ना कोई जो है वहां पे आर्टिकल्स होते हैं और वो मोदी जी की जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर वो बात करते हैं। अरविंद पगारिया जो हैं उनको अब अपॉइंट किया गया है एज हेड ऑफ 16th फाइनेंस कमीशन, और ये जो बॉडी है वैसे तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है उनकी सजेशन पे इनको लिया जाता है, लेकिन जाहिर है कि मुलाकातें इनकी जो है प्राइम मिनिस्टर के साथ हुई हैं और ये जो सेंट्रल स्टेट फाइनेंशियल जो टाइज हैं उसको यहां पे डिस्कस किया है। लेकिन वहां पे जो फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं हिंदुस्तान के अंदर उन्होंने कहा जी कि ये जो हैं अरविंद साहब क्या कर सकते हैं, क्योंकि जो ये गवर्नमेंट है इस वक्त मोदी जी की वो तो सिर्फ अपनी तारीफें कर रही है और वो तो स्टेट्स को फिस्कल फ्रीडम ही नहीं दे रही है, उनको पैसे ही जो सेंटर की गवर्नमेंट है वो नहीं दे रही है, तो वो अपने प्रोजेक्ट्स कैसे चलाएंगे, प्रोजेक्ट्स नहीं चलाएंगे तो अरविंद पंगारिया साहब जो हैं वो फाइनेंस कमीशन में उनको बिठाने का फायदा क्या है कि जब फाइनेंसेस ही स्टेट्स को नहीं मिल रहे हैं। केरला के फाइनेंस मिनिस्टर जो है के एन बाला गोपाल ने कहा है जी कि हमारा तो अब बोरोइंग जो है 4,000 करोड़ से बढ़ गया है, लेकिन यूनियन गवर्नमेंट जो है वो कोर्सिव एटीट्यूड बना के बैठी हुई है और सिर्फ जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं उनको पैसे दे रही है, जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स नहीं है उनको पैसे मिल ही नहीं रहे हैं, तो हम डेवलपमेंट कैसे लाएंगे। तेलंगाना और तमिलनाडु के भी जो चीफ मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स हैं उनकी भी सिमिलर जो है वो ऑब्जर्वेशन हैं, और वो कहते हैं जी कि हम अपनी स्टेट ऑटोनॉमी को कैसे सेफ गार्ड करेंगे जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है अगर हमको पैसे ही नहीं मिलेंगे यहां पे डेवलपमेंट करने के लिए, हम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमको लोगों को जवाबदेह होना है, हम कैसे लोगों के वेलफेयर के लिए काम करें अगर हमको पैसा नहीं मिलता है। ये जो गवर्नमेंट है क्रिटिक्स ने कहा कि एक गुड डेटा तक जो है वो नहीं जमा कर सक रही है कि जिसमें कि बताया जाए कि स्टेट्स को कितने फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं, इसकी वजह से हिंदुस्तान के में इस वक्त स्टेट्स में फिस्कल वीकनेस आती जा रही है और यह शो करती है गवर्नमेंट की इनसिक्योरिटी कि वो बार बार बात तो इकोनॉमिक ऑप्टिमिज्म की करते हैं और वो कहते हैं जी कि हिंदुस्तान में बड़ा ग्रोथ आ रहा है, बड़ा ग्रोथ आ रहा है, लेकिन हिंदुस्तान जो है सफर कर रहा है फ्रॉम पुअर मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स एंड साइलेंट फिस्कल क्राइसिस है इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर। वो कहते हैं जी कि ये कॉन्स्टेंटली जो स्टेट्स हैं कुछ वो डिक्लाइन में हैं, यहां जाहिर है कि जहां पे बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है वो, और इंडिया के अंदर बेतहाशा जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ती चली जा रही है। उन्होंने कहा जी एक अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि कर्नाटका में टोटल 15 गवर्नमेंट की पोस्ट जो है वो निकली हैं जिसके के अंदर 25,000 एप्लीकेंट जो है उसने अप्लाई किया है। तो शाइनी इंडिया की पिक्चर बड़ी शाइनी नजर आ रही है जी, नजर आ रही है। ओके जी, अच्छा जनाब आज तकरीबन जो है 3,000 के करीब इंडिया के अंदर जो क्रिश्चियंस हैं उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी की है, क्योंकि अभी हुआ यह था कि 25 दिसंबर को मोदी जी ने एक क्रिसमस का लंच देते हुए बहुत बड़ी क्रिश्चियन कम्युनिटी को यहां पर बुलाया था और उनको कहा था कि आपके साथ हम अच्छे तालुकात करना चाहते हैं, आपकी बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन है जिसको हम बड़ा मानते हैं। उसके ऊपर ये जो क्रिश्चियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने कहा जी कि वैसे तो हिंदुस्तान मोदी जी ये कह रहे हैं कि हमारा बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लेकिन सिंस 2014 जब से कि बीजेपी की गवर्नमेंट है इंडिया के अंदर कॉन्स्टेंटली क्रिश्चियंस के ऊपर अटैक्स किए जा रहे हैं, उनके अगेंस्ट जो है एंटी कन्वर्जन लॉज के अगेंस्ट उनको सजाएं दी जा रही हैं, खासतौर पर जो बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हैं वहां पर इसको एज अ डिस्क्रिमिनेशन यूज किया जा रहा है, एथनिक वायलेंस जो है वो उनके खिलाफ दिखाई जाती है, खासतौर पर मणिपुर का भी उन्होंने जिक्र किया कि जहां पे कि क्रिश्चियन सिविल सोसाइटी जो है उसके ग्रुप्स के ऊपर बेतहाशा अटैक्स किए गए थे, और उन्होंने कहा जी कि ये अटैक्स बढ़ गए हैं 2011 से 2022 के बीच में बेतहाशा। और मोदी जी वैसे तो जीसस क्राइस्ट को और हमारी कम्युनिटी की बड़ी तारीफ करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्वाइट हैं जो कुछ क्रिश्चियंस के साथ किया जा रहा है, उनके चर्चेस को जलाया जा रहा है, उनको मारा पीटा जा रहा है। तो इसलिए अगर जो है मोदी जी ये कहते हैं कि मैंने कुछ क्रिश्चियंस को बुला के और उनको बताने की दुनिया को कोशिश की है कि हम क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ बड़ा प्यार है, तो ये हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। वो लोग जो वहां पे गए थे ये सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का इनवाइट था, उनके ऊपर जोर नहीं था कि वो जरूर जाते, वो कर्टियसली डिक्लाइन कर सकते थे, लेकिन वो वहां पर गए। लेकिन बहरहाल हम जो है इसको हमने एक्सेप्ट नहीं किया। तो प्लीज डोंट से कि जी क्रिश्चियन सारे जो हैं वो इसको मानते हैं। सो उन्होंने आज वही जो एक सेंटेंस है नॉट इन माय नेम, वही नॉट इन माय नेम उन्होंने क्रिश्चियंस ने कहा है कि हमारे नाम के ऊपर जो है राजनीति करने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर आज जो सबसे बड़ी खबर रही वो दाऊद इब्राहिम से रिलेटेड थी। आपको पता ही है बहुत वॉन्टेड गैंगस्टर हैं और कुछ उनका पता नहीं चलता है कि हिंदुस्तान में है, कराची में है, दुबई में है, कहां पे हैं। बहरहाल जी ये अब बहुत अरसे से चूंकि मुंबई के रहने वाले थे लेकिन महाराष्ट्र में अब थे नहीं, तो इनकी बहुत बड़ी जो प्रॉपर्टी थी वो वहां पे थी, लेकिन इसको आज खरीदा है एक लॉयर ने एक ऑक्शन में, अजय श्रीवास्तवा ने, और ये फॉर्मर शिवसेना के लीडर थे। और उन्होंने कहा जी कि मैंने इसके ऊपर जब सारी जो इनकी लैंड है उसके ऊपर जब हिसाब किताब और न्यूमरोलॉजी लगाई तो मुझे पता चला कि ये मेरे लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है, तो ये सारी की सारी जो चीजें यहां पर और बनी हुई है उनको ढा के मैं सनातन पाठशाला यहां पे, यानी कि एक रिलीजियस स्कूल जो है, जैसे कि हम जिसको मदरसा भी बोलते हैं, तो हम एक ऐसा रिलीजियस स्कूल में जो है खोलूंगा। मदरसा मुसलमानों का होता है, इनका जो है वो पाठशाला होता है, तो वो ये कहते हैं हम खोलेंगे। ये जो सारी की सारी जमीन और एरिया है ये लोकेटेड है मंबाके विलेज में महाराष्ट्र के अंदर, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है इसको ओवरसी किया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने हिंदुस्तान की, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो कॉम्पिटेंट यानी कि अथॉरिटी थी वो थी ऑफ स्मगलर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनिपुलेटर्स एक्ट जो है उनके ऑफिशियल्स जो थे उनके तहत इन्होंने ये सारी की सारी प्रॉपर्टी इनको दी। आपको पता ही है कि दाऊद को डेजिग्नेट किया गया था ग्लोबल टेररिस्ट बाय इंडिया एंड यूएसए इन 2003। अच्छा, ये इसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस प्रॉपर्टी की कीमत जो है 15,000 करोड़ है, कैन यू इमेजिन। और ये जो लॉयर साहब हैं अजय साहब, इन्होंने सिर्फ 2 करोड़ में ये सारी जो है खरीदी है। वाह जी वाह, क्या मजे हैं, वाह वाह क्या मजे, और वो भी दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी, वाह वाह वाह, 15,000 करोड़ की ये प्रॉपर्टी अजय साहब ने 2 करोड़ में खरीदी है। वाह, सही इनकी लॉटरी निकली है सही मानों में, है जी। तो ऐसे है। अच्छा जनाब, आज जो एंटरटेनमेंट की खबरें उसमें सबसे बड़ी खबर रही है जो है रोहित शेट्टी की जो वेब सीरीज पहली आने वाली थी इंडियन पुलिस फोर्स, उसका आज ट्रेलर आ गया है। बड़ा ही लोग इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। इसके अंदर सिद्धार्थ मल्होत्रा और विवेक ओबरॉय आपको नजर आएंगे, शिल्पा शेट्टी भी नजर आएंगी। सिद्धार्थ मल्होत्रा जो है दिल्ली पुलिस अफसर कबीर मलिक के नाम से जो बहुत बड़ा एक क्राइम सिंडिकेट है उसको बस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अंदर देखा जा रहा है, ट्रेलर खुलता है, बहुत सारे ब्लास्ट हो रहे हैं सिटी में, बड़ी डिस्ट्रक्शन आ गई है। और वो कहते हैं जी जो कबीर मलिक साहब हैं वो कहते हैं कि इन्होंने हमारी जो दिल्ली पुलिस की बहादुरी है इसको इन्होंने ललकारा है, तो हम इनको बताना चाहते हैं कि हम ये जो सांप है हमसे खेलना चाहता है लेकिन हम खेलते नहीं है, हम दिल्ली की पुलिस हैं और हम इसको खत्म करते हैं। सॉरी इफ आई सेड मुंबई, आई एम सॉरी, दिल्ली पुलिस के ऊपर है ये सारा सागा जो है, ये दिल्ली पुलिस पे वेब सीरीज है जो बनाई गई है। और जनाब आमिर खान साहब की मैंने आपको बताया था 2 दिन पहले कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है, और अब इसका जो वेडिंग रिसेप्शन है वो January 13 को है, तो अब इसमें कहा जा रहा है कि सल्लू भाई और हमारे शाहरुख खान जो हैं वो भी अटेंड करेंगे। इसके अलावा और जो बड़े बड़े स्टार्स हैं वो भी, ये जो रिसेप्शन प्लान किया गया है BKC जियो सेंटर में, इसमें अजय देवगन, बिग बी, करण जौहर, अक्षय कुमार, करीना कपूर, राजकुमार हिरानी, आशुतोष ग्वालेकर ग्वारीकर, जूही चावला और बहुत से लोग आएंगे। इसके अलावा जो आमिर खान है उन्होंने अंबानीज जो हैं और भी बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो साउथ के हैं उनको भी दावत दी है अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन के लिए। वरुण धवन और करण जौहर का जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं जी, धर्मा प्रोडक्शंस, दे आर ज्वाइनिंग हैंड्स नाउ. अब नई जो अपनी एक जो ये हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया जो 2014 में आई थी और बद्रीनाथ की दुल्हनिया 2017 में, तो इस दुल्हनिया वाली फ्रेंचाइज के अंदर एक तीसरी लेकर आने वाले हैं अब फ्रेंचाइज का फिल्म. तो इसके अंदर जो पहले दो रोल्स थे वो आलिया भट्ट ने किए थे और वरुण धवन के साथ, लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि शायद आलिया भट्ट नहीं रहेंगी, जाह्नवी कपूर होंगी. अब ये चूंकि बहुत सारी खबरें चल रही थी तो करण जौहर साहब को आ गया गुस्सा. उन्होंने आज अपने इंस्टाग्राम के ऊपर कहा कि भाई ये खाम खा अनऑफिशियल चीजें जो है आप ना फैलाएं, खासतौर पर मैं मीडिया को कहता हूं कि प्लीज आप जरा थोड़ा ठहर जाओ, जितनी भी डिटेल्स टाइम प्लान जो भी कुछ होंगे हम आपको बताएंगे खुद से, आप ये गलत किस्म की और इनएक्यूरेट चीजें जो है मीडिया के अंदर मत फैलाओ. तो ऐसा है. हिंदुस्तान के क्रिकेटर जो हैं जी, कैप्टन इनके रोहित शर्मा साहब, वो आज बहुत भड़के हुए नजर आए. हुआ ये कि साउथ अफ्रीका को उन्होंने जो है सिर्फ 55 रन्स पे जो है वो आउट कर दिया सेकंड इनिंग्स में, और पिच जो थी उसके बारे में कहा गया कि बहुत खराब है. पहला जो टेस्ट था वो साउथ अफ्रीका ने जीता था, दूसरा इन्होंने जीता, तो 1-1 से ये सीरीज जो थी ड्रॉ रही. आज मीडिया के साथ केप टाउन में ये बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जी इंडिया को अनड्यू क्रिटिसिज्म दिया जाता है, अगर ऐसी पिचें वहां बनाई जाती तो लोगों ने बड़ा तूफान उठाना था. इस मैच की सबसे बड़ी हाईलाइट थी कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें यहां पर ली थी जस्ट फॉर 15 रन्स. तो वो कहते हैं जी कि ये जब यहां पे हुआ है सारा कुछ तो इसमें सब लोग चुप करके बैठे हुए हैं. मुझे याद पड़ता है कि वर्ल्ड कप के बीच में जो अहमदाबाद के ऊपर पिच थी उसके ऊपर लोगों ने बड़ा शोर मचाया कि इंतहाई बिलो स्टैंडर्ड है, और उसको दिया भी गया था रैंक बिलो स्टैंडर्ड का. लेकिन मुझे हैरत है कि उसी अहमदाबाद की बिलो स्टैंडर्ड पिच जो थी उस पर ऑस्ट्रेलिया के ट्रेविस हेड ने 100 रन्स बनाए थे. तो प्लीज खुदारा मैं सबको कहता हूं कि आप कंट्रीज को देख के बात मत किया करें, आप पिच की बेस पे बात किया करें, बिकॉज इट्स नॉट फेयर कि आप इंडिया को बिला वजह गजीटते हैं. ठीक है जी पायन, हाँ खुश हो, ओके जी. आज जनाब फाइनली आईसीसी ने अनाउंस कर दिया है स्केड्यूल फॉर T20 वर्ल्ड कप 2024 विच विल बी होस्टेड बाय यूएस एंड वेस्ट इंडीज. हमने आपको थोड़े दिन पहले बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच इसके अंदर जो है June 9 को होएगा एट न्यूयॉर्क आइजन हावर पार्क में. इसके अंदर तकरीबन 55 जो है मैचेस खेले जाएंगे इन टू कंट्रीज, यूएस और वेस्ट इंडीज में. वेस्ट इंडीज के जो वेन्यूज शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो बार्बाडोस, किंगस्टन ओवल, ट्रिनिडैड ब्रायन लॉरा क्रिकेट अकेडमी, ग्वाना, प्रोविडेंस स्टेडियम, एंटीग, सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम, सेंट लुशिया, डैरन सामी क्रिकेट ग्राउंड, सेंट विंसेंट, आर्नोस वेल स्टेडियम. और यूएसए के अंदर जो तीन वेन्यूज हैं वो न्यूयॉर्क आइजन हावर पार्क, फ्लोरिडाज लॉडर हिल और ग्रैंड प्रेरे इन टेक्सास. तो वो कहते हैं जी कि ये सेमीफाइनल्स जो हैं June 26 और 27 को होंगे ग्वाना और ट्रिनिडैड में, और फाइनल जो है वो बार्बाडोस में होएगा June 29 को. तो ये आज सारा स्केड्यूल जो है उन्होंने जारी कर दिया है. और जनाब हमारे जो आमिर अजमल हैं जो कि आज पाकिस्तान की टीम अभी गई हुई है ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेलने के लिए, उसमें ऑलराउंडर आमिर अजमल ने बेशुमार जो हैं वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं यहां पे सिडनी टेस्ट के अंदर. एक तो इन्होंने 6 विकेटें ली हैं फॉर 69 रन्स, और टोटल विकेटें जो इन्होंने इस टेस्ट में ली हैं वो 18 ली हैं. और ये ही हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू टेक एज मेनी एज 18 विकेट्स ऑन हिज डेब्यू इन हिज डेब्यू सीरीज. उसके अलावा उन्होंने 82 भी स्कोर किया था इन द फर्स्ट इनिंग्स, जिससे कि हेल्प किया पाकिस्तान को 313 पोस्ट करने के लिए. ही इज द ओनली विजिटिंग प्लेयर टू स्कोर 80s एंड टेक 6 विकेट्स, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के अंदर. इससे पहले वसीम अकरम ने किया था, स्कोर किया था 52 और 123, और उन्होंने 5 विकेट्स भी ली थी फॉर 100 रन्स. तो ही हैज यू नो टेकन वन मोर, और वो भी लेस रन्स के लिए. तो अब इनकी वैसे भी जो 18 विकेट्स हैं ये सरपास कर गए हैं शब्बीर अहमद को, जिसने के 17 विकेट्स ली थी इन हिज फर्स्ट 3 टेस्ट. और इन्होंने जो है आपको मैंने बताया ही है कि इन्होंने जो है 18 ली हैं, सरफराज शब्बीर ने 17 ली थी. और इसके अलावा जो ये हैं ही इज जस्ट 5 विकेट्स बिहाइंड स्पिनर अबरार अहमद, जिन्होंने के ली थी पाकिस्तान के लिए फर्स्ट 3 टेस्ट में 23 विकेट्स. और ही ऑल्सो हैज बिकम द फर्स्ट पाकिस्तानी टू स्कोर 100+ रन्स एंड टेक 18 विकेट्स इन सीरीज वर्सेज ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया. ठीक है जी,
क्या बात है जी,
क्या बात है जी, वाह जी वाह, क्या बात है.
तो ये थी हमारे आज की खबरें, और बाकी की खबरें जो है अब मंडे को आपसे मुलाकात होनी है. यस, सैटरडे संडे हमने ऑफ दे दिया,
शुक्र है मजद भाई, आपको मेरा कितना ख्याल है.
शरद जी को ऑफ दे दिया,
थैंक यू.
स्ट्रिक्टली आई टोल्ड देम वी डोंट वांट टू सी हर
या
फॉर नेक्स्ट 2 डेज.
आई आल्सो डोंट वांट टू सी एनीबॉडी. ठीक है, थैंक यू वेरी मच मल्लिक,
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और अब मैं लिए चलता हूँ आपको प्रोग्राम इन प्रोग्रेस विद जीशान अहमद एंड रंगारंग प्रोग्राम होगा, सुनते रहिए, इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए, 24 आवर्स हम आपके साथ होते हैं। बाकी की बातें इंशाल्लाह ताला मंडे को, उस वक्त के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।
धीरे धीरे से दिल को चुराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जान जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, मजबूर शिकवा करूं मेरे रब को, रब को, एक दिन तुम बिन बीते लगे साल, मेरा हुआ बुरा हाल, मेरा हुआ बुरा हाल, हाल कभी अपना मुझे तो बताओ ना, और लौट कर वापस कभी मेरे पास आओ ना, सोता कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, सोता हूँ कभी रोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, पाकर सब कुछ खोता हूँ तेरे बिना ओ सनम, तेरी मेरी मेरी तेरी एक जिंदड़ी what to do, झूमू मैं नाचू मैं गाँव के लिखूं तेरे लिए मैं क्या करूँ, धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना, पार्टी चलेगी टिल सिक्स इन द मॉर्निंग, जी भर के नाच ले वे भी नाच, नाच के तोड़ दे सैंडल, आंटी पुलिस बुला लेगी तो यार तेरा कर लेगा हैंडल, नाचन हित में जारी, जिसको अपनी जान प्यारी, चुपचाप वो फ्लोर पे आए, फ्लोर पे आके नाचे गाए, नखरे बखरे ना दिखाए, शर्म को करते बाय बाय, माइकल जैक्सन वाले दो तीन एक्शन करके दिखाए, पार्टी करनी है हम पार्टी करेंगे, जिसकी बम में है दम,
मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है, मस्ती है माहौल में, चाय कुमारी है, सारे थके बैठ गए पर अपनी पार्टी जारी है, अरे पंगा तो कोई शुरू करे अपनी भी गरारी है, जुम्मी चुकी नोक पर रखी दुनिया सारी है, रखी दुनिया सारी है,
अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है।
पार्टी शुरू हुई है। नहीं करना वो जाके अपनी भैंस चराए।
This is the tribute, to Talaiwa, from King Kong,
मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के खोखो नच में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। डिस्को में जब ये गाना बजेगा ऑन द फ्लोर आना पड़ेगा लुंगी को उठाना पड़ेगा स्टेप करके दिखाना पड़ेगा। ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। ऑल द रजनी फैंस क्लब में आया मैं तो मुझको रोकेगा कौन और गाय को मेरा मूड में डांस करेगा किसी का डैडी से नहीं डरेगा। जिसको जो भी है करना वो कर लो इधर ही मैं हूँ खड़ा पकड़ लो घर पे जाके तुम गूगल कर लो मेरे बारे में विकिपीडिया पे पढ़ लो। थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। मुझो को थोड़ा राउंड घुमा के अन्ना के जैसा चश्मा लगा के कोकोनट में लस्सी मिला के आ जाओ सारे मूड बना के। ऑल द रजनी फैंस डोंट मिस द चांस। ऑल द रजनी फैंस
जिंदगी अब तुम ही हो। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो।
आरोही हो आए बेटा, तुम ये घर भी बसा रही हो और वो घर भी, मगर बिना शादी किए। दुनिया, समाज क्या बोलेगा?
मेरी दुनिया, समाज जो है बस यही है।
नहीं मेरा मतलब घर के क्लब तब लूंगा लेफ्ट नहीं तो राइट क्लब में होगा शोर बेबी खत्म करो फाइट यू डिसाइड के क्या करना है तुझको तो जरा सा भी डरना है शैंपेन देती है तूने मेरी पेंट कहती है चेंज कर लो होटल लेके रेंट पे
हिप्नोटाइज तेरी कर दिया मैंनो असर छोटी ड्रेस में बॉम्ब लग दी मैंनो क्लोज